प्रॉब्लम कहाँ आती है, वो खुद को उसके स्लेव की पोजीशन पर नहीं ला पाते हैं। बस आज इस कॉन्सेप्ट को इंटरनलाइज करके उठें, जहाँ मेरी जुबान उसको रब मानती है, वहाँ मैं अपने आप को उसकी गुलाम, उसका अब्द, उसकी स्लेव मानना शुरू कर दूँ। जिस दिन आपने और मैंने ये मान लिया ना, आपके और मेरे लिए उसके अहकामात मानना आसान हो जाएगा, उसकी बातों को कुरान में मानना और अडॉप्ट करना आसान हो जाएगा। जितना उसको रब मानेंगे और अपने आप को स्लेव मानेंगे, स्कॉलर्स कहते हैं, उतना आपकी अपनी मर्जी कम होती जाएगी और आप रब की मर्जी को जानना चाहेंगी। मैं ये करना चाहती हूँ, अल्लाह ताला इस बारे में क्या कहते हैं, मैं ज़िंदगी में ये कदम उठाना चाहती हूँ, मेरा दीन मुझे इसके बारे में क्या गाइडेंस देता है, मैं अपनी ज़िंदगी में ये चीज़ सेलेक्ट करना चाहती हूँ, शरीयत मुझे इसके बारे में क्या कहती है। और जिस दिन ये हमारा माइंडसेट बन गया, समझ लीजिए आपके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह एक सबमिशन का एंगल खुल गया, आप सबमिट हो गई रब के सामने, आपने तौहीद को इंटरनलाइज करना शुरू कर दिया। और ये वन टाइम थिंग नहीं है, इट्स अ लाइफ लॉन्ग स्ट्रगल, कॉन्स्टेंटली मुझे और आपको ये करनी है। फाइन, तो ये है अल्लाह का तारुफ सूरतुन नास की पहली आयत में। जब आप ये आयत अब पढ़ेंगी, आपको अपने रब के इन तमाम मुकामात को कम से कम जहन में रखना है, हम्बल होते हुए। قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ, आगे आ रही है आयत नंबर 2, مَلِكِ النَّاسِ। यहाँ पर देखें, आप में से जिनके पास मुसफ़ है, अगर मुसफ़ नहीं है तो आराम से जब क्लास कंप्लीट हो जाए तो ज़रा मुसफ़ को देखिएगा। आप देखेंगी पहली आयत के बाद जहाँ आयत मुकम्मल हो रही है, वहाँ आयत के दायरे के ऊपर लाम अलिफ ला लिखा होगा, और इस लाम अलिफ ला का मतलब होता है कि अभी मफ़हूम मुकम्मल नहीं हुआ, इट्स स्टिल इन कंटिन्यूएशन। यहाँ पर मलिक नास से पहले कुल आऊदु, स्कॉलर्स कहते हैं अंडरस्टूड है, महजूफ़ है, छुपा हुआ है। कह दीजिए मैं इंसानों के रब की हिफाजत में आती हूँ, और किसकी हिफाजत में आती हूँ, कह दीजिए मैं इंसानों के मालिक की हिफाजत में आती हूँ। सो कुल आऊदु यहाँ पर भी, या आऊदु यहाँ पर भी एम्बेडेड है, इसलिए कि दरमियान में दोनों के ला है। अल्लाह ताला की तौहीद के एंगल से एक दूसरी क्वालिटी आपके सामने आ रही है, जो मैंने आपको दूसरा एंगल बताया था तौहीद का, तौहीद अस्मा व सिफात। मलिक अल्लाह का एक एट्रीब्यूट है, इस मलिक का एसेंस आपको अभी रब में भी मिल गया था, सेम एसेंस, जहां पर अल्लाह की अथॉरिटी ऐसी है जो किसी भी और मखलूक की नहीं हो सकती। अल्लाह ऐसा मलिक है जैसा कोई भी नहीं हो सकता, No one can do anything except by the permission of Allah. इसको मलिक नास के एक सिंपल ट्रांसलेशन के तौर पर याद रखिएगा। इस वक्त जिस जगह आप और मैं बैठे हैं, जिस कुर्सी पर मैं बैठी हूँ, जिस जगह, जिस सोफे पर आप बैठे हैं, जिस ज़मीन पर आप और मैं इस वक्त मौजूद हैं, जिस सोलर सिस्टम में आप और मैं मौजूद हैं, अब कम क्लोजर, जिस घर में आप और मैं मौजूद हैं, ये सब अल्लाह की अथॉरिटी और अल्लाह की मिल्कियत और उसकी किंगडम है, ये उसकी चीज़ है, वो मिल्कियत रखता है इस सब की, मेरे हाथ में तो असल में कुछ भी नहीं है। ये इंटरनलाइज कर लें कि मेरे हर चीज़ अल्लाह की है, मेरा और मेरी हर चीज़ का अल्लाह मालिक है। और जिस दिन आपने ये इंटरनलाइज कर लिया, आप और मैं मेरी मर्जी मेरी मर्जी मेरी मर्जी नहीं करेंगे, मेरा जिस्म मेरी मर्जी नहीं करेंगे, अगेन अगर ये हम शरीयत के ऑपोजिट आकर बोल रहे हैं तो हम ये बात नहीं बोलेंगे। इस चीज़ को भी इंटरनलाइज कर लें, मलिक नास में जब आप बोलें, अल्लाह को आप पुकार रही हैं कि मैं अल्लाह उसकी हिफाजत में आती हूँ जो इंसानियत को अपने कंट्रोल में और अपनी मिल्कियत में रखने वाला है, मलिक नास। इस चीज़ को भी याद रखें, कोई इंसान आपको और मुझे उसकी परमिशन के बगैर नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इन द सेम वे कोई बीमारी उसकी परमिशन के बगैर मुझे छू नहीं सकती, कोई शर उसकी परमिशन के बगैर मुझ तक नहीं आ सकता। जिसने ये मलिक नास का कॉन्सेप्ट इंटरनलाइज कर लिया, उसकी ज़िंदगी टोटली डिफरेंट पर्सपेक्टिव पर आ जाएगी, इसलिए कि उसका दिल दिमाग प्योरीफाई होना शुरू हो जाएगा। जिसने मलिकिन नास को समझ लिया, आप जब अल्लाह की हिफाजत में आए पूरे शऊर के साथ आए, जिस दिन आपने मलिकिन नास को समझ लिया, आपको मैं हकीकत बता रही हूँ, आप अपनी ज़िंदगी में जिन जिन मामलात से डरती हैं ना, आपको जिन जिन एंगल्स से खौफ आते हैं, आपके जो भी इस वक्त परेशानियां हैं, आपके वो सब खौफ जो हैं वो कंट्रोल्ड हो जाएंगे। ख़त्म तो नहीं होते ऑन अ ह्यूमन लेवल, ज़ाहरी बात है कहीं ना कहीं से फियर फैक्टर आ जाता है, लेकिन ये सब कंट्रोल्ड रहेगा क्योंकि आप चीज़ों को सही पर्सपेक्टिव में देख सकेंगे। और यही सूरतुल मुल्क मुझे और आपको सिखाना चाह रही है कि हम इंसान कमज़ोर हैं, हमारी ओनरशिप पूरी नहीं है, हमारा इल्म पूरा नहीं है, हम ज़िंदगी में गलतियाँ कर सकते हैं। अगर मुझे किसी की हिफाजत में आना है तो वो अल्लाह है, ना मैं बाहर के शर से अपने आप को बचा सकती हूँ, ना मैं अपने नफ्स के शर से अपने आप को बचा सकती हूँ। अपने नफ्स को अपने रब के ओनरशिप में दे दें, वो मालिक है। ख्वाहिशात भी जो मेरे अंदर आती हैं वो भी किस वजह से आती हैं, उसी रब ने बनाई है ना। हाँ, वो इम्तिहान लेता है कि कौन अपनी ख्वाहिशात को मुझे मालिक बनते हुए ही पूरा करता है। ये है मालिकिन नास का इम्तिहान। मालिकिन नास को एब्जॉर्ब करके इंसान गुनाहों से बच जाता है, और मालिकिन नास आपको इस्तेआज़ा का एक अच्छा पर्सपेक्टिव प्रोवाइड करता है। इसके साथ आप आगे बढ़ते हैं। इसी में एक और बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट जो क्लासिकल स्कॉलर्स मेंशन करते हैं मालिकिन नास से, वो कहते हैं मालिकिन नास में मलिक का जो लफ्ज़ है उसका रूट वर्ड है मीम लाम काफ। यही मीम लाम काफ का रूट वर्ड इससे बना है, जिसको आप कहती हैं मलाइका, फरिश्ते, वो भी इसी रूट वर्ड से बना है। मलकुन फरिश्ते को कहा जाता है, सेम रूट वर्ड। तो फरिश्ते को इस रूट वर्ड से मीम लाम काफ से मलकुन या मलाइका क्यों कहा जाता है? एंशिएंट अरबिक, क्लासिकल अरबिक में अगर आप जाएं कुरान से पहले, तो वो एक टर्म इस्तेमाल करते थे अल अलूका। अल अलूका वो कहा करते थे कि ये किसी मैसेंजर के लिए इस्तेमाल करते थे पुरानी अरबी में, वो जिसको कोई अथॉरिटी दी गई। तो ज़्यादातर क्लासिकल स्कॉलर्स कहते हैं कि मीम लाम काफ से अल अलूका से अल मलाइका बना है, यानी मलाइका कौन है? फरिश्ते हैं। इनको मलाइका क्यों कहा जाता है? इसलिए कि अल्लाह की तरफ से इनको कुछ इख्तियार दिया गया है, जो जिस पोजीशन पर है उसको उस पोजीशन को संभालने का इख्तियार दिया गया है। तो ये रीज़न एक देते हैं स्कॉलर्स फरिश्ते को मलिक बोलने की, जो जहन्नुम का भी गार्जियन फरिश्ता है उसका नाम भी मलिक है। तो ये है आयत नंबर 2 में तौहीद अस्मा व सिफात वाला एंगल, जिसमें हम अल्लाह की अथॉरिटी, अल्लाह की सोवरेनिटी देखते हैं कि अल्लाह अपने बंदों को कॉन्स्टेंटली किस तरह से अपने आप से तौहीद से कनेक्टेड रखता है। तीसरी आयत कनेक्ट कर लूँ, फिर मैं इन तीनों का फाइनल सिनॉप्सिस आपके सामने रखूँगी। सूरतुन नास की तीसरी आयत में भी आप देखेंगी कि आयत नंबर 2 के बाद अगेन एक छोटा सा लाम अलिफ ला लिखा हुआ है। ये भी मतलब यही है कि तीनों आयत कनेक्टेड हैं। कुल आऊदु बि रब्बिन नास, मालिकिन नास, इलाहिन नास, इंसानों के माबूद की हिफाजत में मैं आती हूँ। इलाहिन नास, इलाह कहते हैं माबूद को। इलाह का लफ्ज़ कैपिटल जी से लिखे जाने वाले गॉड अल्लाह के लिए इस्तेमाल किया जाता है। देखें, बहुत इसके ऊपर लेक्चर हो सकता है इलाह की डेफिनेशन के ऊपर, जो अरबी ज़ुबान में इलाह की कॉनोटेशंस आते हैं, बट इन सिंपल आप सिर्फ और सिर्फ 4 जुमले याद रखें। अल्लाह कैसा इलाह है? इलाह वो जिसकी इबादत की जाए, यानी जिसके सामने आप सजदे में सर रखें, जिसके सामने आप अपने नफ्स को, अपने जिस्म को, अपनी रूह को हम्बल कर दें, जिसके सामने आप झुक जाएं। नंबर 1, वो जिसकी इबादत की जाए। नंबर 2, इलाह वो जिसको सवाल ना किया जाए, जिसको आप क्वेश्चन ना करें। नंबर 3, इलाह कौन होता है? वो जिससे वालेहाना मोहब्बत की जाए, जिससे आप बहुत मोहब्बत करते हैं ना, अगर वो आपको कुछ करने को कहता है तो आप उससे सवाल नहीं करते, बिकॉज आपने तो उसको खुश करना होता है, तो आप सिर्फ उसकी बात मानते हैं। वो जिसकी इबादत की जाए, वो जिसको सवाल ना किया जाए, वो जिससे वालेहाना मोहब्बत की जाए, और फोर्थ एंगल वो जिसकी इताअत में हर वक्त सर झुका रहे विदाउट एनी डाउट, जिसकी बात पर शक ना किया जाए, वो है इलाह और वो है अल्लाह सुभाना व तआला। इलाहिन नास, मैं एक ऐसे रब की हिफाजत चाह रही हूँ जो कि मेरा माबूद है। अल्लाह मैं सिर्फ आपके सामने सर झुकाती हूँ, अल्लाह मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, अल्लाह मैं आपके हर हुक्म पर सर झुकाऊंगी और मैं आपके किसी हुक्म पर शक और सवाल नहीं करूंगी। ये है इलाहिन नास के अंदर कॉन्सेप्ट। स्कॉलर्स ने इतनी खूबसूरत, इमाम कुर्तुबी ने, और अगर आप इमाम इब्ने अतिया को पढ़ें, क्लासिकल स्कॉलर्स हैं दोनों की तरफ से, ये अरबी ज़ुबान में मौजूद हैं, उन्होंने बहुत बहुत प्यारी बात इसके अंदर की। वो कहते हैं इंसान के ज़हनी सलाहियत के मुताबिक सूरतुन नास की पहली तीनों आयतों में तौहीद को डिस्क्राइब किया गया है। बिल्कुल जैसे एक बच्चा होता है तो उसकी शुरू में माँ बाप के साथ इमोशनल और साइकोलॉजिकल नीड्स बहुत ज़्यादा होती हैं, उसको हर वक्त अपने अम्मी अब्बू चाहिए होते हैं। तो अल्लाह ताला ने सूरह नास की पहली आयत में अपना तारुफ रब्बिन नास से करा दिया। फिर जब इंसान बड़ा होता है, स्कूल, प्रोफेशन, जॉब्स, बिजनेसेस, तो अब उसको अथॉरिटेटिवली चीज़ों को मैनेज करना होता है, लीगैलिटीज़ को मैनेज करना होता है। तो अल्लाह ताला ने अपनी तौहीद में, अस्मा व सिफात में जिस तारुफ को मेंशन किया, मालिकिन नास, असल अथॉरिटी, असल लीगैलिटी तो तुमको अल्लाह की तरफ से मिलेगी। फिर इंसान के साथ, ये पहला था साइकोलॉजिकल इमोशनल नीड, फिर सेकंड था इंसान की वर्ल्डली, जिसको आप कहते हैं लीगल नीड्स, और फिर थर्डली, थर्ड पॉइंट पर आता है इलाहिन नास। इंसान की उम्र का वो हिस्सा जब इंसान 60 पर रिटायर हो जाता है, और फिर उसके बाद इंसान का अब ज़्यादा टाइम घर पर गुजरता है, अब इंसान के पास फुर्सत के लम्हात होते हैं। ज़्यादातर ऐसे मौके पे माँ बाप हयात नहीं होते, औलादें अपनी अपनी जगह सेटल हो जाती हैं, जॉब्स और बिजनेसेस मोस्टली छूट जाते हैं बिकॉज रिटायरमेंट हो जाती है। अब इंसान की स्पिरिचुअल नीड्स बढ़ती हैं और अब इंसान एक इलाह की तलाश में होता है, अब इंसान खुदा की तलाश में होता है, अब इंसान कुछ अल्लाह अल्लाह करना चाहता है। हम आप में से जितनी ख़वातीन अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त 30+ हैं, आप सब ने ये बचपन से सुना होगा कि जब बड़े हो जाएंगे ना फिर करेंगे अल्लाह अल्लाह। क्यों कहते थे हम ये? इट्स वेरी नेचुरल, जब और कुछ नहीं रहता तब अल्लाह याद आना शुरू हो जाता है, जबकि अल्लाह ने तो इंसेंटिव दिया है कि बेहतरीन इबादत जवानी की इबादत है, बेहतरीन अल्लाह के सामने सबमिशन, अपनी फुल एनर्जीज के साथ सबमिशन, बेहतरीन अल्लाह के कलाम और अल्लाह के अहकामात को थामना तो उस वक्त का थामना है जब तुम्हारे पास तुम्हारे नफ्स की तरफ से कांस्टेंट ख्वाहिशात की पोर डाउन रेन हो रही हो, एक डाउन पोर हो रहा हो। तो अल्लाह ताला ने एक नेचुरल प्रोग्रेशन इंसान का यहाँ रखा है। इलाहिन नास स्पिरिचुअल नीड्स पूरी करता है, साइकोलॉजिकल इमोशनल नीड्स रब पूरी करता है, रब का तारुफ रब बिन नास, मलिकिन नास में इंसान की वर्ल्डली मैटर्स को हैंडल करने के लिए अथॉरिटेटिव पावर्स में इंसान मालिक को कैसे जहन में रखे, वहाँ पर अल्लाह ताला ने अपना नाम अस्मा व सिफात से मेंशन कर दिया। और तीसरा इलाहिन नास में इंसान की स्पिरिचुअल नीड्स को मेंशन कर दिया गया। ये है एक एडल्ट मुसलमान का जहन जो बनना चाहिए, और जैसे ही शऊर आए, बुढ़ापे का इंतज़ार नहीं करना चाहिए स्पिरिचुअलिटी के लिए, जैसे ही शऊर आए, अल्लाह से हम दुआ करते हैं कि हम जिस जिस उम्र में आ गए अल्लाह हमें आज शऊर दे दे, और अल्लाह हमारी औलादों को और हमारी प्रोजेनी को उनके बुलूगत के ऊपर जल्द अज जल्द ये इस्लाम का प्रोग्रेशन का सबूत और उनको ये वाला माइंडसेट दे दे। इंसान जान जाए रब अल्लाह है, मेरी साइकोलॉजिकल इमोशनल नीड्स पूरी करेगा, मेरे दुनिया के मामलात मालिक बनते हुए संभालेगा, और मेरी स्पिरिचुअल रिलैक्सेशन के लिए, मेरी स्पिरिचुअल थर्स्ट की क्वेंच के लिए अल्लाह एज अ इलाह मौजूद होगा। जब आप ये सोचते हैं तो अब जब आप ये तीन आयतें पढ़ेंगे आपका माइंडसेट बन जाएगा, आप उसकी प्रोटेक्शन में जा रहे हैं, वो फहुआ रब्बी व मालिकी व इलाही। अन्नास को तो हटाएंगी आप दरमियान में से, पढ़ेंगी तो आप, बिकॉज आप रब का कलाम पढ़ रहे हैं। लेकिन अन्नास में आपके लिए ये एलियनेटेड कलाम नहीं रहेगा अब. यू कैन फील दिस ऑन अ पर्सनल लेवल. रब मेरा, वाहुआ रब्बी, मालिक मेरा व मालिकी, इलाह मेरा व इलाही. ये अल्लाह ताला समझाना चाह रहे हैं. एंड अ ब्यूटिफुल थिंग इन तीन इंट्रोडक्शन के टाइटल्स में आपको बताया था, रब अरब आम अपने लिए भी इस्तेमाल करते थे, रब्बुल बैत इस्तेमाल करते थे, मलिक का लफ्ज़ भी अरब इस्तेमाल किया करते थे अपनी ओनरशिप डिक्लेयर करने के लिए, मलिकिल बैत कहा करते थे कि ये घर का मालिक है. लेकिन इलाह का लफ्ज़ कभी भी किसी इंसान के लिए नहीं इस्तेमाल किया गया. इलाह सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट याद रखें जो कुरान ने दिया है, इन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद. अल्लाह इलाह के तौर पर वाहिद है. और यही चीज़ अल्लाह ताला सूरतुन नास से हमारे जहन में बिठाना चाह रहे हैं. दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ तौहीद. हाँ, इसमें ये याद रखें एक और खूबसूरत पहलू, अल्लाह के तीन नामों में रब, मलिक, इलाह. इलाह सिर्फ आपको जहन में रखना है, कोई नहीं हो सकता. रब और मलिक किसी इंसान के लिए आ सकता है. तो स्कॉलर्स ने इतनी प्रैक्टिकल बात मेंशन की इस जगह पे. वो कहते हैं कि इंसान अपनी दुनिया में मदद किसी इंसान से ले सकता है. मिसाल के तौर पर मेरा इस वक्त पेन गिर जाए या मेरा इस वक्त मोबाइल गिर जाए और मैं अपनी बेटी से कहूँ कि बेटा ज़रा ये मोबाइल पकड़ा दो, तो हम जब ये मदद मांग रहे हैं तो ये मदद इंसान ले सकते हैं. जब भी अल्लाह ताला ने हमें सूरतुन नास में तौहीद का एक मुकम्मल कॉन्सेप्ट दिया है. हाँ, तवक्कुल अपनी जगह पे. तो जब आप इस पूरी डेफिनेशन को तीन नामों की, तीन इंट्रो के एस्पेक्ट्स की आज के हालात पर मेंशन करेंगे, यू विल टेक प्रिकॉशनरी मेजर्स इन दिस पैंडमिक टाइम्स, लेकिन कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग क्या होगा? तवक्कुल अल्लाह. बचाने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह की है. बचाएगा मेरा रब, बचाएगा मेरा मलिक, बचाएगा मेरा इलाह. वो कॉन्सेप्ट आपको इंशाल्लाह एक इम्यून सिस्टम के अंदर, एक स्पिरिचुअलिटी के अंदर बूस्ट देगा. इसलिए कि वही है जिसने मुझे कॉन्स्टेंटली थामा हुआ है. और ये इलाह के कॉन्सेप्ट को मजबूत करना आज हम सब के लिए अशद ज़रूरी है. इसलिए कि इलाह को, डेफिनेशन को अगर आप याद रखें तो याद रखें, जिसने इलाह की ये चार एंगल की डेफिनेशन आज जिंदा कर ली, उसने अपना कलमा शहादत रिवाइव कर लिया, उसने अपनी शहादत को इंटरनलाइज कर लिया. नन हैज़ द पावर फॉर दिस पोजिशन. क्यों कहते हैं हम ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई इलाह है ही नहीं सिवाय उसके. सही. तो अब इन चीज़ों को जब आप जहन में रखते हुए आगे बढ़ते हैं तो ये तीन आयतें अल मुस्तआदा बिही को मेंशन करती हैं. किसकी हिफाजत चाहिए हमें, वो इंट्रोडक्शन यहाँ पर आ गया. अब जो आगे प्रोसेस चलेगा, इससे पहले कि हम आयत नंबर चार पर बढ़ें, अभी यहाँ इस कॉन्सेप्ट को समझना बड़ा ज़रूरी है. ये जो अल्लाह को हमने पहचाना है, ये जो हमें अल्लाह की हिफाजत चाहिए, किस से बचने के लिए चाहिए? शैतान से बचने के लिए चाहिए. जिसको हम अल मुस्तआदा मिन में स्टडी करेंगे. शैतान इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है. और इंसानों में से जिस इंसान ने सबसे ज़्यादा शैतान के रास्ते पर चलने की कोशिश भी की और चल कर भी दिखाया, वो फिरौन था. आप नोट करेंगी कि फिरौन ने ये तीनों इस्तलाहात, जो तीनों इस्तलाहात यहाँ पर आई हैं अल्लाह के लिए, ये कुरान ने मेंशन की कि फिरौन ने ये तीनों इस्तलाहात अपने लिए इस्तेमाल की. उसने कहा था फ़क़ाला अना रब्बुकुमुल आला, उसने कहा था मैं हूँ तुम्हारा रब सबसे बड़ा. फिर उसने अपने मिनिस्टर्स से कहा था अलैस अली मुल्कु मिस्र, डोंट आई ओन द किंगडम ऑफ मिस्र, क्या मिस्र मेरा नहीं है, क्या मैं सिर्फ मिस्र का बादशाह नहीं हूँ? तो अपने आप को उसने एज अ मलिक रेफर किया था. फिर अपने मिनिस्टर्स को, अपने वजीरों को तवज्जो करते हुए उसने कहा था या अय्युहल मलाउ, ए मेरे सरदारो, मा अलिमतु लकुम मिन इलाहिन गैरी, मैं अपने अलावा तुम्हारे लिए कोई इलाह नहीं जानता. यानी अगर तुमने किसी के सामने झुकना ही है तो मेरे जनरल्स सुन लो, वो मैं हूँ। ये आपके सामने फिरौन की पर्सनैलिटी स्कॉलर्स क्यों मेंशन करते हैं सूरत अन्नास के इस मुकाम पर? वो कहते हैं इसलिए कि आपको और मुझे हिफाजत चाहिए शैतान के इस बिगेस्ट प्रॉब्लम की तरफ से। फिजिकल प्रोटेक्शन तो चाहिए, साइकोलॉजिकल प्रोटेक्शन में हमें क्यों चाहिए? आप फिरौन को देख लें, आज शैतान हम में से हर एक को ट्रैप कर रहा है तकब्बुर के ज़रिए। जो मसला उसने फिरौन में डाला था वही मसला वो हम में डालता है, एरोगेंस का। इसी एरोगेंस की वर्स्ट मैनिफेस्टेशन फिरौन था। आज हम ऐसे टाइम्स में रहते हैं कि आज कोई अपने आप को खुदा नहीं कहता। ये फिरौन जैसा पैरानॉइड कोई नहीं है कि कोई अपने आप को जो है वो अनरब्बुकुमुल आला कहने लग जाए। लेकिन हमको शैतान जिस तरह से ट्रैप करता है उसका हथियार क्या है? वी आर इन टाइम्स जहां शैतान ने हमारे एरोगेंस को ऐसा कर दिया कि हम अपने आप को बहुत कुछ समझने लग गए। आई मी एंड माई सेल्फ, वी डिक्लेयर आर सेल्फ आर ओन मास्टर। सूरत फुरकान की आयत नंबर 43 में आता है, अरआईता मन इत्तखज़ा इलाहहु हवाहु, क्या तुमने उस शख्स को देखा है जिसने अपनी ख्वाहिश को अपना इलाह बना लिया? आप और मैं जुबान से नहीं कहते अना रब्बुकुमुल आला, लेकिन हम में से हर एक का बॉडी लैंग्वेज, अल्लाह ना करे, और हम में से ज़्यादातर का उठना बैठना और हम में से ज़्यादातर की अप्रोच हमें मिनी फिरौन बना देती है। एरोगेंस रिफ्लेक्ट करती है हमारे अंदर से और ये ईगो हमारे अंदर शैतान डालता है। याद कर लीजिएगा कि इस सूरत की बिगनिंग में ही अल्लाह ताला ने कुल के ज़रिए हमारी वहीं पर ईगो को स्लैम किया था ताकि आप और मैं अपने अल्लाह के सामने अपने आप को हम्बल करें, और यही तकब्बुर शैतान हम में डालता है। हाँ, तकब्बुर के लिए मैं एक पॉइंट बता दूँ। देखिए, तकब्बुर सिर्फ़ और सिर्फ पैसे वालों में नहीं आता, तकब्बुर सिर्फ और सिर्फ किसी क्वालिटी को रखने वालों में नहीं आता, पैसे वालों में भी आ सकता है, कोई सिफत, कोई क्वालिटी, कोई करेक्टरिस्टिक रखने वालों में भी आ सकता है। तकब्बुर गुर्बत के साथ भी आता है। तकब्बुर माल ना होने या कोई सलाहियत ना होने के साथ भी आता है। वो कैसे रिफ्लेक्ट करता है? जब कोई गरीब इंसान तमाम अमीर इंसानों को सिर्फ और सिर्फ गुनाहगार समझने लग जाए, जबकि आप और मैं उनको जानते भी ना हों, ये भी तकब्बुर की मैनिफेस्टेशन है। तो हम में से हर कोई अपना अपना मुहासिबा करे। अब अपने आसपास इस वक्त तकब्बुर लोग ढूंढने मत निकल जाइएगा, या घरों में अपने जो है वो एक मैग्नीफाइंग ग्लास नहीं लगा लीजिएगा, अब चेक करती हूँ कौन मुतकब्बर है। नहीं, अपने आप को चेक करें, मैं गुफ्तगू में तकब्बुर का इजहार करती हूँ या नहीं करती। वेल्थ होना भी इंसान को मुतकब्बर बनाता है, कोई मुकाम मिल जाना भी इंसान को मुतकब्बर बना सकता है, और कोई दौलत ना होना और कोई मुकाम ना होना ये भी इंसान को मुतकब्बर बनाता है। इंसान के जुमले में वो चीज़ मैनिफेस्ट कर जाती है। और शैतान का ये सबसे बड़ा आज हथियार है इंसानियत के ऊपर, वो हम इंसानों को सबसे ज़्यादा इस तकब्बुर के ज़रिए अंदर ही अंदर मिनी फिरौन बना रहा है। हालांकि ख़ुद वो अल्लाह को खालिक मानता था, खुद उसने कहा था, कुरान में आता है खलकतनी मिन नार, अल्लाह को ही कहा था आप ही ने बनाया मुझे नार से, आप मेरे खालिक हैं। तो तौहीद को एक्नॉलेज करने वाला था, सजदा सिर्फ अल्लाह के सामने करता था, आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार कर दिया था। तो वो चाहता क्या है? वो इंसानों के अंदर इस तकब्बुर को लाना चाहता है और तौहीद के कॉन्सेप्ट को डिस्टॉर्ट करना चाहता है। और हम इंसानों का मसला क्या है? हम इंसान हैं। याद रखें, अल्लाह ने जहां तीन मर्तबा अपनी सिफात के साथ रब इन्नास, मलिक इन्नास, इलाह इन्नास, तीन सिफात के साथ जहां अल्लाह ताला ने इंसान को ऑनर किया है, मुस्लिम नहीं कहा, मुत्तकी नहीं कहा, मोमिन नहीं कहा, अन्नास, अपने तीनों तौहीद के कॉन्सेप्ट्स में अल्लाह ताला ने अन्नास को इस्तेमाल किया है, तो एक ऑनर है। वहाँ अन्नास कहा है, अलबशर नहीं कहा। अन्नास कह के हम आपको और मुझे ये भी बता दिया कि इंसान बार बार भूल जाएगा कि उसको रब के सामने आजजी इख्तियार करनी है। इंसान बार बार भूल जाएगा कि शैतान उसके अंदर तकब्बुर इंस्टिल करेगा। इंसान बार बार भूल जाएगा कि उसको अपने रब की हिफाजत मांगनी थी। इंसान बार बार भूल जाएगा कि रब इला है, तो हम भूलते हैं, इसीलिए अल्लाह ने इंसान से अन्नास के लफ्ज़ को मेंशन किया है। वरना हम सब के अंदर एक बेसिक इन्फॉर्मेशन मौजूद है, अलस्तु बि रब्बिकुम क़ालू बला शाहिदना। आलम अरवाह में हम सब ये एक्सपीरियंस कर चुके हैं, लेकिन हम बार बार इस वादे को भूल जाते हैं। कैसे भूलते हैं, क्यों भूलते हैं? शैतान को ये ताकत दी गई है कि वो हमें वसवसों के ज़रिए इस तरह से ये वादा भुलाने लग जाए। शैतान और भुलाता कैसे है, वेरी इंटरेस्टिंग। प्लीज़ अभी 2 मिनट हैं, ठीक है, टेक योर टाइम। अभी आप लोग मुझे टाइम लिखकर किसी ने भेजा शायद, अभी 2 मिनट हैं, सो आई विल कम्प्लीट माई कॉन्सेप्ट। हाँ, शैतान भुलाता कैसे है? देखिए, शैतान पॉकेट्स में भुलाता है। मैं नमाज तो पढ़ लूँगी, कुरान भी पढ़ लूँगी, मुझे कलमा भी पढ़ना आता है, कभी कभार तस्बीह भी कर लूँगी। भुलाता कब है? जब अपने से कोई नापसंद का शख्स सामने आता है तो तकब्बुर में शिकार कर देता है। गुस्से में हम भूल जाते हैं अल्लाह मालिक है, भूल ही जाते हैं ना, समझते हैं हम मालिक हैं, जब भी तो गुस्सा करते हैं सामने वाले पे। जब किसी से नाराज़ होते हैं तो ये भूल ही जाते हैं कि अल्लाह मालिक है, क्या पता इस नाराज़गी में उसको मौत आ जाए या मुझको मौत आ जाए। तो शैतान भुला देता है अल्लाह का उस वक्त मालिक होना। जब कोई ख्वाहिश बहुत ज़्यादा क्रेविंग के साथ हो रही होती है, चाहे वो जायज़ हो या नाजायज़ हो, नाजायज़ ख्वाहिशात को भी कर जाते हैं। क्यों? इसलिए कि अल्लाह का रब होना, इलाह होना, मालिक होना पॉकेट में उस वक्त भूल जाते हैं। जब अपने बेटों को माएँ उनकी बीवियों के मुतालिक बदज़न कर रही होती हैं, आई एम श्योर वो भूल जाती हैं कि अल्लाह मालिक है। जब बीवियां शोहरों को उनकी माओं की बुराइयां बढ़ा चढ़ा कर एम्ब्रॉयडरी करके बता रही होती हैं, उस वक्त वो भूल जाती हैं कि अल्लाह मालिक है। शैतान भुला देता है। शोहर अपनी बीवियों के साथ जब नाइंसाफ़ी करते हैं, उस वक्त वो भूल जाते हैं कि अथॉरिटी अल्लाह की है, उनकी नहीं है। उनको तो सिर्फ गार्जियन बनाया गया था इस रिश्ते में, उनको तो सिर्फ जिम्मेदारी दी गई थी कवाम बना के। तो शैतान पॉकेट्स में हमें भुलाता है। क्या भुलाता है? हर मर्तबा गुनाहों और गलतियों में ये भुला देता है कि अल्लाह मेरा रब है, मलिक है, इलाह है। सूरत मुजादला की आयत नंबर 19 में आता है, इस्तहवदा अलैहिमु शैतानु फअंसाहुम ज़िक्रुल्लाह। शैतान उन पर काबू कर लेता है और फिर वो अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल हो जाते हैं। शैतान आपको और मुझे कांस्टेंट मुकम्मल नहीं अल्लाह को भुलाता, पॉकेट्स में देखें कैसे भुलाता है। ये जो हम नमाज पढ़ते पढ़ते भूल जाते हैं, 4 रकत पढ़ी थी कि 3 पढ़ी थी, 2 पढ़ी है या 1 पढ़ी है, ये होता है ना। कुरान पढ़ना, आपने कुरान का पोर्शन हिफ्ज़ किया था, नहीं रिवाइज किया, बहुत जल्दी भूल जाते हैं। ये सब का सब क्यों होता है? बच्चे नमाज ही पढ़ना भूल जाते हैं। ओह अच्छा, टाइम निकल गया अम्मी, पता ही नहीं चला, आपकी 2 आवाज़ों के बाद तीसरी आवाज़ ही नहीं आई। ये होता है ना, शैतान अल्लाह की इबादत करना भुला देता है। विद इन इबादत ज़रा हमारा ध्यान भटकता है, वो हमारे ख्यालात और अटेंशन को उचक लेता है। शैतान हमें मुसलमान होने के बावजूद शुक्रगुजार होना भुला देता है। शैतान हमें रिश्तों की नेमत होने के बावजूद उनको अपने हाथों से तबाह करवाता है और ये भुला ही देता है कि हमने उनके हक अदा करने थे। तो ये शैतान की ट्रिक है जो अल्लाह ताला ने यहाँ मेंशन की है। इससे पहले कि शैतान का इंट्रोडक्शन आता, अल्लाह ने बता दिया, अन्नास, तुम इंसान हो, तुम भूल जाओगे, तुमको रिमाइंडर्स की ज़रूरत है, तुम्हें कॉन्स्टेंटली अपने आप को बताना है अल्लाह इलाह है। हम नहीं कहते अपनी ज़ुबान से कि मैं रब हूँ, मैं इलाह हूँ या फला हमारा इलाह है, लेकिन आज अगर आप इलाह की डेफिनेशन को जहन में रखें, 2 चीज़ें कम से कम याद रखें, जिसकी इबादत की जाए, जिसकी ओबीडियंस की जाए। हम इबादत अल्लाह की करते हैं, ओबीडियंस ख़ानदान की रसूमात की करते हैं, ओबीडियंस फैशन की करते हैं, ओबीडियंस नफ्स की करते हैं, ओबीडियंस माल की करते हैं। हम एक तरफ सर झुका रहे होते हैं इबादत में अल्लाह के सामने, लेकिन हम इताअत अपने नफ्स की कॉन्स्टेंटली कर रहे होते हैं। तो जिसने आज प्रैक्टिकली ये समझ लिया कि मुझे इबादत भी सिर्फ अल्लाह की करनी है और इताअत भी अल्लाह की करनी है, जिसने अपनी नमाज को भी अल्लाह के लिए खालिस किया और दो नमाजों के दरमियान के वक्फे को भी अल्लाह के लिए खालिस किया, वो इंशाल्लाह कॉम्प्रिहेंसिवली अल्लाह की हिफाजत में आने के काबिल हो जाएगा, इसलिए कि वो तौहीद के कॉन्सेप्ट को समझ जाएगा। ये है तौहीद का कॉन्सेप्ट, ये है अल्लाह का मुकम्मल तारुफ, जिसमें अल्लाह ताला ने बहुत खूबसूरती से 3 आयात में मुख्तसर अल्फाज में अपने पूरे जलाल को बहुत खूबसूरती से मेंशन कर दिया है। अल्लाह ताला हम सबको बेहतरीन तौहीद और ईमान बिल्लाह नसीब फरमाए। अल्लाह ताला हमारी जो घरों के अंदर छोटी छोटी खराबियां हमारे नफ्स की कमी की वजह से और कोताहियों की वजह से आ जाती हैं, अल्लाह उस पर हमारी इस्लाह फरमाइए और हमें दरगुजर फरमाइए। अल्लाहुम्मा जअलना फ़ी रमदान मिनल मुस्तग़फिरीन वजअलना फ़ी रमदान मिन इबादिका सालिहीन वजअलना फ़ी रमदान मिन औलियाइकल मुक़र्रबीन बिरअफ़तिका या अरहमर राहिमीन। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक। अल्लाह ताला हमारा इकट्ठा होना कबूल फरमाए, अल्लाह ताला हमारे तमाम गुनाहों को इस रमदान की बरकत से हमारे नामाए अमाल से गायब कर दे, डिलीट कर दे, ख़त्म कर दे। अल्लाह इस वक्त उम्मत पर अपना रहम फरमाए, अल्लाह ताला इंसानों पर इस वक्त रहम फरमाए। अल्लाह ताला जो जो मरहूमीन आपके पास आ चुके मुस्लिम थे, अल्लाह उनकी बेहतरीन मगफरत फरमाइए। अल्लाह हम इंसानों को इस पैंडमिक से निजात दिलाइए। अल्लाह जो काफिर हैं, जो नॉन मुस्लिम्स हैं, अल्लाह हम उनकी हिदायत की भी दुआ करते हैं अपने इस महीने की रहमतों के बदले। ये जो पैंडमिक की मुश्किल है, अल्लाह इसको कपल करके उनके दिल हिदायत के लिए खोल दीजिए। अल्लाह हमारे शहरों को, अल्लाह हमारे मुल्कों को, अल्लाह हमारी दुनिया को इस वायरस के शर से महफूज रखिए। अल्लाह हमें अपने वालिदैन के लिए और हमारी औलादों को हमारे लिए बेहतरीन सदकाए जारिया बनाइए। अल्लाह ताला हमें मौत इस हाल में दीजिए कि हम अपने अंजाम से राज़ी हों और आप हमसे राज़ी हों। अल्लाह हमें क़यामत के दिन रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफ़ात नसीब फरमाइए। अल्लाह हमसे रमज़ान के तमाम रोज़े और इबादतें कबूल फरमाइए और हमें बेहतरीन मग़फ़रत के साथ ईद खुशियों के साथ ईद नसीब फरमाइए। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।